एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिस पर शायद हम सब ने कभी ना कभी सोचा जरूर होगा, विज्ञान और धर्म का रिश्ता। क्या ये दो बिल्कुल अलग, हमेशा टकराने वाली दुनिया है?
बिल्कुल, अक्सर तो यही सुनने में आता है ना, जैसे दोनों के बीच कोई कह सकते हैं एक जंग छिड़ी हुई है सदियों से। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है?
हाँ, यही सवाल है।
आज हम इतिहासकार थॉमस डिक्सन की किताब साइंस एंड रिलीजन और वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन के सहारे इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे।
और ये सवाल आज के जमाने में देखिए और भी अहम हो जाता है। सोचिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज, ये सब विज्ञान की देन है। लेकिन इनके नैतिक और सामाजिक पहलू कहीं ना कहीं हमारी गहरी मान्यताओं, हमारे मूल्यों से जुड़े हैं, जिनमें अक्सर धर्म की भी भूमिका होती है।
सही कहा। तो क्या ये हमेशा से टकराव ही रहा है, या फिर सहयोग भी था, संवाद, या कुछ और भी मुमकिन है? चलिए डिक्सन की नज़र से इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि विज्ञान और धर्म के इस जटिल रिश्ते की असलियत क्या है। पहले थोड़ा थॉमस डिक्सन के बारे में जान लेते हैं। ये कोई आम इतिहासकार नहीं है। ये लंदन की जानी मानी यूनिवर्सिटीज़ जैसे क्वीन मेरी और किंग्स कॉलेज में विज्ञान, दर्शन और धर्म के इतिहास के प्रोफेसर रहे हैं।
अच्छा।
इनकी खास दिलचस्पी विक्टोरियन दौर के विचारों और भावनाओं के इतिहास में रही है।
मतलब ये इस बात के माहिर हैं कि गुजरे जमाने में लोग कैसे सोचते थे, क्या महसूस करते थे और दुनिया को कैसे समझते थे। और सबसे खास बात क्या है पता है?
क्या, बताइए।
इनका नजरिया, ये ना तो किसी वैज्ञानिक खेमे से लिख रहे हैं, ना ही किसी धार्मिक पक्ष से। एक इतिहासकार की तरह इनका काम है अतीत को उसी के माहौल और संदर्भ में समझना, बिना आज के चश्मे से उसे देखे या परखे।
हाँ, ये बहुत जरूरी है।
ये पुराने दस्तावेजों को खंगालते हैं, उस दौर की बहसों को देखते हैं, ये जानने के लिए कि असल में क्या हुआ था।
अच्छा, तो मतलब ये किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बल्कि बस इतिहास की परतें खोल रहे हैं। ये जरूरी है, क्योंकि तभी तो हम इस लड़ाई वाले विचार से आगे बढ़कर असलियत देख पाएंगे। ये हमें इतिहास को उसकी जटिलता में समझने में मदद करते हैं।
तो फिर ये किताब आखिर है किस बारे में? सीधे शब्दों में कहें तो ये उस आम धारणा को चुनौती देती है कि विज्ञान और धर्म हमेशा से एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। डिक्सन कहते हैं कि ये जो संघर्ष की अवधारणा या कॉन्फ्लिक्ट थीसिस है ना, ये कोई ऐतिहासिक सच्चाई नहीं, बल्कि ज्यादातर 19वीं सदी में कुछ खास वजहों से गढ़ी गई कहानी है।
बिल्कुल, किताब का असली सवाल यही है कि इतिहास में इन दोनों के बीच रिश्ता आखिर रहा कैसा है। और जवाब है बहुत मिलाजुला, पेचीदा।
मिलाजुला कैसे?
डिक्सन दिखाते हैं कि इसमें टकराव भी था, लेकिन साथ ही सहयोग भी था, एक दूसरे से सीखने सिखाने का दौर भी था, कभी दोनों अपने अपने दायरे में आजाद भी रहे। यानी कहानी एक रंगी नहीं, बहुरंगी है।
और ये किताब एक बड़ी मुश्किल को हल करने की कोशिश करती है, वो है इस लड़ाई वाले मॉडल की वजह से आई दिमागी सुस्ती, है ना?
हाँ बिल्कुल। जब हम मान लेते हैं कि ये दोनों हमेशा लड़ते ही रहे हैं, तो हम उस लंबे और दिलचस्प इतिहास को देखने से चूक जाते हैं जहाँ धर्म ने विज्ञान को प्रेरणा दी, या जहाँ न्यूटन जैसे महान वैज्ञानिक अपने काम को ईश्वर की कारीगरी समझने का जरिया मानते थे।
हाँ, और डिक्सन का सबसे जरूरी संदेश शायद यही है कि इस रिश्ते को समझने के लिए हमें आज के साइंस और रिलीजन के खांचों से बाहर निकलना होगा।
सही कहा।
हमें उस दौर में झांकना होगा जब इन शब्दों के मायने आज जैसे थे ही नहीं। जिसे हम आज विज्ञान कहते हैं, उसे पहले प्राकृतिक दर्शन कहा जाता था।
फिलॉसफी।
हाँ।
और वो अक्सर ईश्वर, सृष्टि और दुनिया के मकसद जैसे सवालों से गहराई से जुड़ा था। ये नजरिया बदलना जरूरी है।
तो चलिए अब किताब के अंदर थोड़ा और झांकते हैं।
जी।
डिक्सन शुरुआत कहां से करते हैं?
वो सीधे उसी संघर्ष वाली कहानी पर आते हैं। पहले ही अध्याय में वो बताते हैं कि ये विचार की विज्ञान और धर्म की तो हमेशा से दुश्मनी रही है, असल में 19वीं सदी की देन है।
अच्छा।
19वीं सदी। हाँ, दो अमेरिकी लेखक थे, जॉन विलियम ड्रेपर और एंड्रू डिक्सन वाइट, जिन्होंने इस विचार को बहुत फैलाया।
अच्छा, पर क्यों फैलाया उन्होंने, कोई खास वजह?
हाँ, वजह थी। डिक्सन बताते हैं कि उनके अपने मकसद थे, जैसे विज्ञान को एक सम्मानित पेशा, मतलब प्रोफेशन का दर्जा दिलाना, समाज और संस्कृति पर चर्च के असर को कम करना, और सेक्युलर शिक्षा को बढ़ावा देना। वो वाइट साहब तो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के संस्थापकों में से थे और चाहते थे कि यूनिवर्सिटी चर्च के नियंत्रण से आजाद रहे।
ओह।
इसके लिए उन्होंने इतिहास से चुन चुन कर ऐसी घटनाएं उठाई जैसे गैलीलियो का मामला और उन्हें बढ़ा चढ़ाकर विज्ञान बनाम धर्म की लड़ाई की तरह पेश किया।
ओह, तो मतलब कहानी को एक खास रंग दिया गया था। फिर डिक्सन इससे आगे कैसे बढ़ते हैं? क्या वो दिखाते हैं कि इससे पहले क्या था?
बिल्कुल, अगले अध्याय में वो हमें और पीछे ले जाते हैं, उस दौर में जब आधुनिक विज्ञान का जन्म भी नहीं हुआ था। और यहाँ एक चौंकाने वाली बात सामने आती है।
क्या बात?
डिक्सन तर्क देते हैं कि पश्चिमी दुनिया में, खासकर ईसाई धर्मशास्त्र ने, असल में विज्ञान के पनपने के लिए कुछ जरूरी जमीन तैयार की थी।
ये तो बिल्कुल उल्टी बात लग रही है। कैसे? धर्मशास्त्र ने जमीन तैयार की?
हाँ, सोचिए, एकेश्वरवाद का विचार, यानी एक ही तर्कसंगत रैशनल ईश्वर है, इसने ये सोच दी कि ब्रह्मांड भी व्यवस्थित है, नियमों से चलता है, इसे समझा जा सकता है।
अच्छा,
ये देवताओं की मनमर्जी से चलने वाली चीज नहीं है। फिर ये विचार कि इंसान ईश्वर की छवि में बना है, इसका मतलब हुआ कि इंसानी दिमाग में इतनी क्षमता है कि वो इस व्यवस्था को समझ सके। प्रकृति को तो ईश्वर की दूसरी किताब माना जाता था, जिसका अध्ययन करना भी एक तरह का धार्मिक काम था।
हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। मतलब दुनिया को समझने की कोशिश करना ईश्वर को ही समझने जैसा था।
कुछ वैसा ही मध्ययुग के विचारक जैसे थॉमस एक्विनास ने तर्क और चीजों को गौर से देखने, ऑब्जर्वेशन पर जोर दिया। तो डिक्सन दिखाते हैं कि शुरुआत में टकराव नहीं बल्कि एक तरह का मेल जोल था।
फिर ये गैलीलियो वाला मामला इतना मशहूर कैसे हो गया विज्ञान बनाम धर्म के प्रतीक के तौर पर? डिक्सन इसके बारे में क्या कहते हैं?
हाँ, ये तीसरा अध्याय इसी पर है। डिक्सन फिर से दिखाते हैं कि ये सीधी साधी एक अकेले वैज्ञानिक की अज्ञानी चर्च के खिलाफ लड़ाई वाली कहानी नहीं थी। मामला बहुत पेचीदा था।
अच्छा,
असल झगड़ा इस बात पे ज्यादा था कि बाइबल की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है। क्या सिर्फ धर्मशास्त्री तय करेंगे या फिर गैलीलियो जैसे प्राकृतिक दार्शनिक भी खगोलीय खोजों के आधार पर बाइबल के कुछ हिस्सों की नई व्याख्या कर सकते हैं?
अच्छा, तो ये अधिकार की लड़ाई भी थी, सत्ता का संघर्ष।
बिल्कुल, साथ ही उस समय चर्च के अंदर भी काफी उथल पुथल थी। काउंटर रिफॉर्मेशन का दौर था, चर्च अपनी सत्ता मजबूत करना चाह रहा था। और दिलचस्प बात यह है कि कई चर्च के खगोलविद भी कॉपरनिकस के सूर्य केंद्रित मॉडल का इस्तेमाल हिसाब किताब के लिए कर रहे थे।
अरे वाह!
गैलीलियो की गलती शायद वैज्ञानिक कम और राजनीतिक या कूटनीतिक ज्यादा थी। वो थोड़े कह सकते हैं अड़ियल थे और उन्होंने पोप को नाराज कर दिया था।
और न्यूटन, उनका क्या? वो तो बहुत धार्मिक माने जाते हैं।
हाँ, न्यूटन का उदाहरण तो बिल्कुल अलग कहानी कहता है। वो बहुत गहरे धार्मिक व्यक्ति थे, हालांकि उनके विचार पारंपरिक चर्च से थोड़े अलग थे। वो मानते थे कि उनके खोजे हुए नियम, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम,
हाँ,
ईश्वर की बुद्धिमता और उसकी बनाई दुनिया की अद्भुत व्यवस्था को दिखाते हैं। उनके लिए विज्ञान और ईश्वर में कोई विरोध नहीं था, बल्कि विज्ञान ईश्वर को जानने का एक जरिया था।
तो गैलीलियो और न्यूटन दोनों ही दिखाते हैं कि तस्वीर कितनी अलग अलग हो सकती है। फिर आगे चल के क्या हुआ? जब भूविज्ञान जियोलॉजी का विकास हुआ और पता चला कि पृथ्वी तो लाखों साल पुरानी है, बाइबल की उत्पत्ति जेनेसिस की कहानी सो तो ये मेल नहीं खाता था, तब क्या हुआ?
सही सवाल है, ये चौथे अध्याय का विषय है। 18वीं-19वीं सदी में जब भूविज्ञान ने दिखाया कि पृथ्वी बहुत पुरानी है, तो जाहिर है उत्पत्ति की कहानी की शाब्दिक व्याख्या पर सवाल उठे। लेकिन डिक्सन फिर दिखाते हैं कि इससे फौरन कोई युद्ध नहीं छिड़ गया।
नहीं
नहीं, कई शुरुआती भूविज्ञानी खुद पादरी थे। उन्होंने अपने वैज्ञानिक नतीजों और अपनी आस्था में तालमेल बिठाने की कोशिश की।
कैसे? उन्होंने क्या किया?
उन्होंने उत्पत्ति को पढ़ने के नए तरीके ईजाद किए। जैसे कुछ ने कहा कि उत्पत्ति में जो दिन बताए गए हैं वो 24 घंटे वाले दिन नहीं बल्कि लंबे भूवैज्ञानिक युग हैं, डे एज थ्योरी।
अच्छा, डे एज थ्योरी।
हाँ, कुछ ने कहा कि उत्पत्ति के पहले और दूसरे वाक्य के बीच लाखों साल का गैप हो सकता है, गैप थ्योरी। मतलब उन्होंने अपनी समझ को बदला, आप समझ रहे हैं, विज्ञान को सीधे खारिज नहीं किया।
उन्होंने व्याख्या को एडजस्ट किया।
बिल्कुल, और उसी दौर में प्राकृतिक धर्मशास्त्र नेचुरल थियोलॉजी का भी बड़ा जोर था। ये विचार कि प्रकृति की जटिल डिजाइन जैसे आंख की बनावट ईश्वर के अस्तित्व का सबूत है। विलियम पहले की मशहूर घड़ीसाज वाली मिसाल इसी सोच का नतीजा था।
अच्छा हाँ, वो घड़ीसाज वाली मिसाल कि अगर आपको कहीं घड़ी मिले तो आप मानेंगे कि उसे किसी ने बनाया है, वो अपने आप नहीं बन सकती। वैसे ही प्रकृति की जटिलता देखकर लगता है कि उसे किसी बुद्धिमान डिजाइनर ने बनाया है।
हाँ वही, तो ये दौर भी अनुकूलन और संवाद का था, सीधे टकराव का नहीं। लेकिन फिर आया डार्विन का सिद्धांत।
हाँ,
जिसने शायद सबसे ज्यादा हलचल मचाई।
हाँ, डार्विन और विकासवाद, इवोल्यूशन, ये तो संघर्ष वाली कहानी का दूसरा बड़ा खंभा माना जाता है। कहा जाता है कि डार्विन ने ईश्वर की जरूरत ही खत्म कर दी। डिक्सन इसे कैसे देखते हैं?
डिक्सन यहाँ भी कहानी की जटिलता दिखाते हैं। ये पांचवां अध्याय है। ये सच है कि डार्विन के सिद्धांत 1859 में प्रकाशित ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ने कई धार्मिक लोगों को चौंकाया और कुछ ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन डिक्सन बताते हैं कि प्रतिक्रिया एक तरफा नहीं थी।
अच्छा।
कई बड़े ईसाई नेता और विचारक भी थे जिन्होंने विकासवाद को अपनाया।
सच में?
उन्होंने इसे कैसे स्वीकार किया? ये तो चौंकाने वाली बात है।
उन्होंने तर्क दिया कि ईश्वर का इस तरह एक सिस्टम बनाना जो खुद ब खुद लाखों सालों में इतनी विविधता और जटिल जीव पैदा कर सके, ये तो उसकी कारीगरी का और भी बड़ा सबूत है।
वाह, ये अचानक सब कुछ बना देने से ज्यादा शानदार है। फ्रेडरिक टेम्पल, जो बाद में कैंटरबरी के आर्च बिशप बने, और मशहूर लेखक चार्ल्स किंग्सले जैसे लोगों ने इसे इसी तरह देखा। डिक्सन ये भी बताते हैं कि डार्विन के सिद्धांत पर शुरुआती आपत्तियां अक्सर वैज्ञानिक थीं, सिर्फ धार्मिक नहीं। जैसे कि गुण कैसे अगली पीढ़ी में जाते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये सवाल थे।
मतलब आज जो हम अमेरिका में सृजनवाद बनाम विकासवाद की तीखी बहस देखते हैं, वो उस शुरुआती दौर जैसी नहीं थी।
नहीं, डिक्सन के मुताबिक वो टकराव का रूप बाद में ज्यादा उभरा, खासकर 20वीं सदी में अमेरिका में। शुरुआती प्रतिक्रिया कहीं ज्यादा मिलीजुली थी।
फिर 20वीं सदी में भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान, कॉस्मोलॉजी का दौर आया। बिग बैंग सिद्धांत के बारे में क्या? क्या उसने धर्म के साथ संघर्ष पैदा किया?
यहाँ तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है और संघर्ष वाली सोच को पूरी तरह पलट देती है। ये छठा अध्याय है।
कैसे?
एक कैथोलिक पादरी और भौतिक विज्ञानी, जॉर्जेस लेमेत्रे।
एक पादरी ने? ये तो कमाल की बात है, मुझे नहीं पता था।
हाँ, और मजे की बात यह है कि शुरुआत में कई सेक्युलर वैज्ञानिकों को ये सिद्धांत पसंद नहीं आया।
क्यों?
क्योंकि उन्हें लगा कि ये तो बाइबल की शून्य से सृष्टि वाली बात जैसा लगता है, क्रिएशे एक्स निहिलो जैसा। उन्हें लगा कि कहीं ये धर्म को विज्ञान में घुसाने की कोशिश तो नहीं।
अच्छा।
दूसरी तरफ 1951 में पोप पायस 12 ने बिग बैंग की तारीफ की और कहा कि ये वैज्ञानिक खोज सृष्टि की धार्मिक समझ से मेल खाती है।
वाह, ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। जहां वैज्ञानिक हिचक रहे थे, वहां पोप उसे अपना रहे थे। ये वाकई दिखाता है कि हकीकत कितनी पेचीदा है।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि विज्ञान और धर्म के बीच की रेखा हमेशा उतनी साफ नहीं होती जितनी हम मान लेते हैं।
फिर सातवें अध्याय में डिक्सन आज की बहसों पर आते हैं, जैसे न्यूरोसाइंस, जेनेटिक्स, विकासवादी मनोविज्ञान।
हाँ हाँ, और इससे आत्मा, चेतना, नैतिकता जैसे पारंपरिक धार्मिक विचारों को चुनौती देते हैं।
हाँ, आजकल ये बातें बहुत होती हैं। क्या हमारा दिमाग ही सब कुछ है? क्या आत्मा जैसी कोई चीज है? क्या हमारा अच्छा व्यवहार भी बस हमारे स्वार्थी जीन्स का नतीजा है?
डिक्सन इन सवालों को उठाते हैं और साथ ही वो नए नास्तिकों, न्यू एथिस्ट्स जैसे रिचर्ड डॉकिंस या सैम हैरिस की आलोचना भी करते हैं।
अच्छा, उनकी आलोचना क्यों करते हैं?
डिक्सन का मानना है कि ये लोग संघर्ष वाली कहानी को ही बहुत सरल और अऐतिहासिक तरीके से दोबारा पेश कर रहे हैं। वो अक्सर आस्था, फेथ को ऐसे दिखाते हैं जैसे वो बिना किसी सबूत के अंधा विश्वास हो। जबकि धर्मशास्त्र की लंबी परंपरा में आस्था और तर्क के बीच जटिल रिश्ते रहे हैं, वो इस जटिलता को नजरअंदाज करते हैं।
और फिर किताब के आखिर में डिक्सन क्या निष्कर्ष निकालते हैं? इतने सारे ऐतिहासिक उदाहरणों के बाद कोई मॉडल या तरीका बताते हैं समझने का?
हाँ, आठवें और आखिरी अध्याय में डिक्सन संघर्ष वाले मॉडल से आगे बढ़कर विज्ञान और धर्म के रिश्तों के कई और मॉडल पेश करते हैं जो हमें इतिहास में देखने को मिलते हैं।
जैसे?
जैसे एक तो वही संघर्ष मॉडल जो गलत होते हुए भी बहुत पॉपुलर है, दूसरा स्वतंत्रता मॉडल कि दोनों के दायरे अलग हैं, विज्ञान बताता है दुनिया कैसे काम करती है, धर्म बताता है इसका मतलब या मकसद क्या है।
हाँ, नोमा वाला आइडिया।
हाँ, स्टीवन जे गुल्ड का नोमा, नॉन ओवरलैपिंग मैजिस्टीरिया। तीसरा संवाद मॉडल कि दोनों अलग होते हुए भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं, सीख सकते हैं, खासकर नैतिकता या ब्रह्मांड की शुरुआत जैसे मुद्दों पर।
ठीक है।
और चौथा एकीकरण मॉडल, जहां कोशिश की जाती है कि वैज्ञानिक ज्ञान और धार्मिक विश्वास को मिलाकर एक पूरी विश्व दृष्टि बनाई जाए। डिक्सन कहते हैं कि इतिहास में ये सारे मॉडल किसी न किसी रूप में मौजूद रहे हैं, कोई एक तरीका नहीं है जो हमेशा से लागू होता हो।
तो इस पूरी बातचीत से डिक्सन की किताब से कुछ मोटी मोटी बातें क्या निकल कर आती हैं? मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यही है कि ये सोचना बंद करना होगा कि विज्ञान और धर्म हमेशा से लड़ते आए हैं। ये कहानी 19वीं सदी में बनी, असली इतिहास ज्यादा पेचीदा है।
हाँ, और दूसरी बात ये कि हमें आज के विज्ञान और धर्म के चश्मे से अतीत को नहीं देखना चाहिए। पहले चीजें बहुत घुली मिली थीं। जिसे हम प्राकृतिक दर्शन कहते थे वो ईश्वर और सृष्टि के सवालों से जुड़ा था। न्यूटन खुद को वैज्ञानिक और दुश्मन धार्मिक लोगों को नहीं मानते थे।
तीसरी बात जो थोड़ी चौंका सकती है वो ये कि पश्चिमी एकेश्वरवाद ने कुछ मायनों में विज्ञान के लिए जमीन तैयार की, एक व्यवस्थित समझने लायक ब्रह्मांड का विचार देकर।
सही कहा। और चौथी अहम बात, गैलीलियो या डार्विन जैसे मामलों को सरल विज्ञान बनाम धर्म की लड़ाई समझना गलत है। इनमें राजनीति, सत्ता, व्यक्तिगत झगड़े, व्याख्या के तरीके, सब कुछ शामिल था। हमें सरल जवाबों से सावधान रहना चाहिए।
बिल्कुल। और पांचवी बात कि धर्म भी कोई पत्थर की लकीर नहीं रहा है। धर्मशास्त्रों ने नई वैज्ञानिक खोजों के साथ खुद को बदला है, उनकी व्याख्या की है, उनसे संवाद किया है।
हाँ, चाहे वो पृथ्वी की उम्र हो या बिग बैंग, ये भी कहानी का एक अहम हिस्सा है।
इस किताब में कुछ ऐसी बातें हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं, जैसे डिक्सन का ये कहना कि विज्ञान और धर्म के बीच एक स्थायी और अनिवार्य संघर्ष का विचार एक 19वीं सदी का आविष्कार है, न कि कोई ऐतिहासिक वास्तविकता। ये सुनते ही दिमाग में सवाल उठता है, तो फिर ये झूठी कहानी इतनी चली क्यों?
हाँ, और ये वाली बात भी देखिए, सदियों तक प्राकृतिक दर्शन, जिसे अब हम विज्ञान कहते हैं, को अक्सर धर्मशास्त्र की एक शाखा या साथी माना जाता था, ईश्वर की रचना के माध्यम से उसकी बुद्धि और शक्ति का अध्ययन करने का एक तरीका।
ये आज की सोच से कितना अलग है, जैसे दो दुश्मन नहीं बल्कि एक ही टीम के खिलाड़ी हों। गैलीलियो मामले पर ये नजरिया भी बहुत अहम है। गैलीलियो मामला इस बात पर अधिक संघर्ष था कि बाइबल की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है और चर्च की सत्ता को कैसे बनाए रखा जाए, न कि केवल वैज्ञानिक अवलोकन और धार्मिक हठधर्मिता के बीच की लड़ाई। ये हमें सिखाता है कि किसी भी झगड़े की ऊपरी सतह के नीचे कई और परतें हो सकती हैं।
बिल्कुल, और डार्विन वाला ये सच तो जानना ही चाहिए। डार्विन के प्रति प्रतिक्रिया एकीकृत धार्मिक युद्ध नहीं थी। कई प्रमुख ईसाई विचारकों ने विकासवाद को ईश्वर की रचनात्मक पद्धति के एक नए और अधिक शानदार विवरण के रूप में सराहा। ये दिखाता है कि धर्म के अंदर भी कितनी विविधता होती है, जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं।
तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब ऐतिहासिक बातों का हमारी आज की जिंदगी से क्या लेना देना है? हम इस जानकारी का क्या करें?
मेरे ख्याल से पहली चीज तो ये है कि ये हमें ज्यादा सजग पाठक और श्रोता बनाता है ना?
हाँ।
जब भी मीडिया में या कहीं और विज्ञान बनाम धर्म का झगड़ा दिखाया जाए, तो हम रुक कर सोच सकते हैं, क्या ये कहानी वाकई इतनी सरल है? कहीं कोई एजेंडा तो नहीं? कौन सी बातें छुपाई जा रही हैं?
सही बात है, यह हमें चीजों की तह तक जाने के लिए उकसाता है। दूसरा फायदा ये हो सकता है कि हम अपनी बातचीत में, चाहे वो दोस्तों से हो या समाज में, ज्यादा समझदारी दिखा सकते हैं। अगर हम जानते हैं कि इतिहास में सहयोग और संवाद भी रहा है, तो शायद हम आज भी झगड़े की बजाय बातचीत के रास्ते खोल सकते हैं। भारत जैसे देश में जहां धर्म लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा है और विज्ञान भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये समझ बहुत जरूरी है।
बिल्कुल। और तीसरा, ये उन लोगों के लिए राहत की बात हो सकती है जो खुद अपनी वैज्ञानिक सोच और धार्मिक आस्था के बीच खिंचाव महसूस करते हैं।
हाँ, ये बहुत लोगों के साथ होता होगा।
हाँ।
हुनी, पता चलता है कि ऐसा महसूस करने वाले वो पहले नहीं हैं, और इन दोनों में तालमेल बिठाने के कई तरीके इतिहास में मौजूद रहे हैं। जरूरी नहीं कि आपको हमेशा एक पक्ष चुनना ही पड़े।
और आखिर में यह हमें एक बड़ा सबक सिखाता है, किसी भी चीज को उसके ऐतिहासिक संदर्भ में समझना कितना जरूरी है। आज की सोच को अतीत पर थोपना गलत है।
सही है।
यह हमें ज्यादा संतुलित और गहरा नजरिया देता है, जो जिंदगी के हर पहलू में काम आ सकता है।
इस पूरी चर्चा के बाद मेरे लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि आसान कहानियों से सावधान रहना चाहिए, खासकर जब मामला विज्ञान और धर्म जैसे गहरे विषयों का हो। इनका रिश्ता एक सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक उलझा हुआ, बदलता हुआ जाल है, जिसमें दोस्ती, दुश्मनी, संवाद, चुप्पी, सब कुछ शामिल रहा है। हमें इस जटिलता को स्वीकार करना होगा।
और मेरे लिए सबसे हैरान करने वाली बात यही थी कि ये जो संघर्ष का आइडिया है, ये कितना नया है। महज 150 साल पुराना और इसे कैसे जानबूझकर खास मकसदों से गढ़ा गया था।
हाँ,
ये याद दिलाता है कि जो बातें हमें बिल्कुल स्वाभाविक लगती हैं उन पर भी सवाल उठाना कितना जरूरी है। ये किताब वाकई आंखों से संघर्ष का पर्दा हटाकर जटिलता का नजारा दिखाती है।
हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज के दौर में जब विज्ञान और भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जेनेटिक एडिटिंग से लेकर AI तक, हम इन नई चुनौतियों और संभावनाओं को धर्म और नैतिकता के नजरिए से कैसे देखें।
बिल्कुल,
शायद ज्यादा खुले दिमाग, ज्यादा ऐतिहासिक समझ और संवाद की ज्यादा इच्छा के साथ।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।